ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के मधुबन घर ज्ञान सरोवर में तपस्या कर रहे हैं, योग बट्टी कर रहे हैं, और तपस्या हमारे जीवन को निखारती है, आत्मा को कंचन बनाती है, और जो हमारा लक्ष्य है कि हमें देव पद पाना है, भविष्य हमारा कितना ऊंचा और श्रेष्ठ है, उस मंजिल तक पहुंचना है, और अवश्य ही वैसे ही हमारा जीवन उन धारणाओं से संपन्न होता जा रहा है। वो चिन्ह हमारे से दिखाई देते हैं, आत्मा स्वयं में भी अनुभव करती है कि पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या बन रही हूं। कितनी अंदर खुशी होती है, हृदय गद गद करता है। अपने आप को झांक कर देखो, स्वयं में कितना परिवर्तन महसूस होता है। बड़े दीदी मनमोहिनी एक क्लास अक्सर बहुत कराया करती थी ब्राह्मणों को, और पूछा करती थी पहले आप क्या थे और अब आप क्या बन गए। तो सभी बड़े खुशी खुशी और बड़े नाज से वो अंतर सुनाते थे, दीदी पहले का जीवन तो कैसा था, अब तो हम ऊंच कुल के ब्राह्मण बन गए, अब तो हम देवता बन रहे हैं, अब तो हम श्री नारायण श्री लक्ष्मी जैसे बन रहे हैं, आदि आदि इतनी नशे की बातें। तो दीदी पूछा करती थी फिर उसका क्या अनुभव होता है। तो हर एक को अपने गुण, अपनी धारणाएं, अपनी त्याग की हुई बातें वो याद आती हैं। और मैं समझती हूँ आप सबको भी ऐसा रूहानी नशा है ना? बोलो, जिनको है हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, नशे का हाथ है, ताली बजानी चाहिए मेरे को आपके लिए हा? और आपको अपने लिए। कितना नशा और खुशी है। और प्यारे ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहला पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ? विष्णु चतुर्भुज का। और बाबा ने जब वो देखा तो बाबा अचंभित हो गया, क्योंकि साथ ही साथ बाबा को सुनाई दिया तत्त्वम। तो बाबा हैरान हो गए कि मैं ये हूं, लेकिन साथ ही साथ तुरंत बाबा को उसके बाद पक्का 100% स्वयं में निश्चय हो गया और नशा चढ़ गया कि मेरा भविष्य ये है, मेरी मंजिल ये है, मेरा लक्ष्य ये है। और इतना निश्चय पक्का हो गया कि बाबा को अंदर तात लग गई तैयारी की, और उसके बाद सब कुछ बाबा को शून्य लगने लगा, व्यर्थ लगने लगा कि ये जो ज्ञान हीरों का मैं व्यापार कर रहा हूं ये तो पत्थर है, कहां विष्णु और कहां आज मैं। उस समय तो बाबा लक्खी बाबू कहलाता था, ब्रह्मा तो बाद में कहलाया, बड़ा प्रतिष्ठावान था समाज में, बहुत बड़ा व्यापारी था, सुखी परिवार था, लेकिन वो नशा उतर गया सारा। और ये नशा चढ़ गया, वो आवाज बाबा के कानों में बार बार जाती रही, तत्त्वम, और वो विष्णु का चित्र सामने। ये भी मालूम नहीं था कि ये लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है, भले बाबा नारायण का भक्त था। ये इतिहास आपने सुना है, बाबा की पॉकेट में हमेशा नारायण का चित्र रहता था, लेकिन कभी आभास नहीं हुआ था, सपना नहीं आया था कि मैं ये बनने वाला हूं। कितनी कमाल है ड्रामा की, कैसे हर राज ड्रामा में छिपा हुआ है और समाया हुआ है और फिक्स है। तो धीरे धीरे बाबा को अन्य साक्षात्कार भी हुए, फिर श्री बाबा की प्रवेशता हुई और सब कुछ ज्ञान के राज खुलने शुरू हो गए। तो हम सब भी, वो इतिहास तो बड़ा लंबा है, सबने सुना हुआ भी है, लेकिन ये बात इसलिए हमने आपको याद कराई कि ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, अपना लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। लौकिक संसार में भी जिसको जो लक्ष्य होता है वो उसको कभी भूलता नहीं है। डॉक्टर बनने वाला हर समय, छोटा बच्चा भी अगर आप उसको याद करा देते हैं तो वो हर घड़ी यही गाता है, जिसको भी मिलेगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। यहां तक कि उसकी नकल भी शुरू कर देता है, स्टेथोस्कोप गले में डाल लेगा और कहेगा आओ मैं आपको सुई लगाता हूं, जबकि उसको पता कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे तो पढ़ाई से बन जाता है, वैसा लगन होती है अंदर, मेहनत करता है तो एक दिन बन भी जाता है, अन्य भी जो भी संसारिक बातें हैं। परंतु यहां तो हम इतने पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं कि प्यारे बाबा ने हमको इतना ऊंचा लक्ष्य दिया, सिर्फ एक ब्रह्मा को नहीं, अपनी सारी ईश्वरीय संतान को। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हैं। तो बाबा ने अपने जीवन में सबसे पहली धारणा विष्णु बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि देवता बनना माना सर्व गुण संपन्न बनना। अभी देखो, कई दिन से मैं देख रही हूं, पढ़ रही हूं, आप सब भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाबा का रोज रोज मुरली में ये आता रहा है 3-4 दिन लगातार कि आप सर्वगुण संपन्न बनो। कहां तक गुण धारण किए हैं, क्योंकि हमारी डिग्री यही है, इसके लिए ही हम पढ़ रहे हैं। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, आगे 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब देखो ये पांचों बातें मेरे जीवन में कितनी आई। अब इन पांचों बातों को, जो हमारी डिग्री है, बहुत ऊंची लग रही है, अगर थोड़ा सा सोचते हैं तो क्या मैं सर्व गुणों को धारण कर रही हूं, भारी लगने लगता है। परंतु ये भारी है नहीं, इसके लिए बाबा ने हमको सबसे सहज बात याद रखने की यही कही है कि कल्प पहले वाली स्मृति सामने लाओ, क्योंकि आप पहली बार नहीं बन रहे हो। कौन कौन पहली बार देवता बन रहा है, हाथ खड़ा करो। पहली बार बन रहा है जो, हाँ अच्छा, एक दो ने किया है शायद, समझा नहीं बात को। हाँ पहले बने थे कभी देवता, हाँ? कौन कौन बने थे पहले? अच्छा पास हो गए आप सब, हाँ? पास हो गए ना सब, तो अब भी पास हो जाओगे। जब इस बात में पास हो गए तो देवता बनने में भी पास होंगे ना, हाँ? हाँ, क्योंकि जब कोई काम एक बार कर लिया जाता है तो दोबारा करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा कर रहा होता है कहते हैं तुम हट, मेरे को मालूम है ये कैसे होता है, मैं फटाफट कर दूंगा। तो आप हर कल्प में, हर 5000 वर्ष पर, हर ड्रामा के इस अंतिम जन्म में देवता बने थे, देवता बन रहे हो और फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को ये पक्का हो गया और बाबा ने वही पुरुषार्थ आरंभ कर दिया तुरंत। अब वो कितनी सारी बातें हैं, सारा इतिहास आपको मालूम है। बाबा के लौकिक में भी ऐसे संस्कार पहले थे, भले इसकी स्मृति नहीं थी बाबा को, कि किसी को दुख नहीं देना, सुख देना है, सबको संतुष्ट करना है, खुश रहना है, उमंग में रहना, ये बाबा के पहले से ही थे। फिर तुरंत दान महापुण्य, जो भी अच्छा संकल्प आए उसको देर नहीं करनी, हाँ, डिले इज डेंजरस कहते हैं ना, बाबा का प्रैक्टिकल जीवन में था। और इसीलिए तुरंत बाबा ने देखो उसी समय ही घर में तार डाल दी, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, हाँ, मैं हुआ रेल का राही, डाल दी ना तार तुरंत, देर नहीं लगाई बाबा ने। तो हम अपनी मंजिल की ओर तब तीव्रता से आगे बढ़ेंगे जब हम हर शुभ संकल्प को तुरंत करेंगे, देर नहीं लगाएंगे, सोचते नहीं रहेंगे। अक्सर करके ये हमारा पुराना संस्कार हावी रहता है कि सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें मन में आती हैं, बाबा की मुरली सुनकर उस समय संकल्प ही करते हो कि कल से मैं अपनी ये धारणा ठीक कर लूंगा, अब मैं ये सेवा करूंगी, अब मैं अमृत वेला अच्छा करूंगी, आदि आदि सारी बातें, हाँ, या जो भी हमें अपना परिवर्तन करना होता है। परंतु फिर देखते हैं उसको जीवन में लाने में टाइम लग जाता है, बहुत देर हो जाती है, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, खुद को भी कई बार शर्म भी आता है। तो लक्ष्य हमारे जीवन में आता जाए, वो धारणाएं हमारे जीवन में बन जाएं, तो यही एक विशेषता चाहिए सबसे पहली। कौन सी? तुरंत दान महापुण्य। माना जो भी आपको संकल्प आता है उसे तुरंत करो, देर नहीं करो। बाबा ने यही ही किया हर बात के अंदर। समर्पित होने में भी देर नहीं लगाई, वो बाबा का पार्ट था। आपका पार्ट है दोनों तरफ निभाओ, बैलेंस रखो, तो उसको भी करने में आप देर नहीं करो। चलो आपको ये नहीं कहा गया कि आप प्रवृत्ति में रहते हो, छोड़ के आ जाओ यहां, आपको कहा गया श्रीमत यही मिली कि आप रहते न्यारे रहो, प्यारे रहो। ठीक है ना ये बात? अब आप कहो मैं आज ही यहां रह जाता हूं, आपको छुट्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि आपका वो रोल है उसको संभालना। लेकिन उसमें मुझे क्या तुरंत करना है कि जो मुझे श्रीमत मिली है उसे मुझे अपने जीवन में लाना है, देर नहीं करनी है। तो बाबा ने एकदम ये अभ्यास शुरू कर दिया, जो बाबा की श्रीमत मिली श्री बाबा की पहली पहली, कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। ये बाबा का आरंभ में ही, शुरुआत में ही तुरंत पुरुषार्थ आरंभ हो गया। और उस पुरुषार्थ की बहुत सी बातें बाबा के जीवन से दिखाई देनी शुरू हो गई। और इसीलिए बाबा जल्दी संपूर्ण निर्विकारी बन गया। बाबा ने धीरे धीरे सभी बातों से मोह निकाल दिया, नष्ट मोह होता गया। लौकिक गीता के अंदर भी सारा ज्ञान पूरा होने के बाद अंत में कौन सी बात है जो कही? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो ऐसा देखो, बाबा ने जब अभ्यास किया तब तो बाबा उस देवपद नंबर 1 श्री कृष्ण की रचना तैयार हो गई ना। श्री कृष्ण पहली पहली रचना है ना, और उसकी यही महिमा है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो स्वयं को हम ऐसा तैयार कर रहे हैं, ये लक्षण निशानी मेरे जीवन में कितनी है कि मैं आत्मा नष्टो मोह बनती जाऊं, यह अब तक भी मुझे कहीं कहीं खींच होती है, याद आती है, या मैं रह नहीं सकती। कई बार कईयों को व्यक्तियों में मोह नहीं होता, धन में मोह होता है। एक भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, उसने अपना अनुभव सुनाया, का मुझे घर के किसी संबंधी से कोई वास्ता नहीं, कमाता उन्हीं के लिए हूं मैं और भर भर के उन्हीं को ही देता हूं, लेकिन मुझे चिंता हर समय उसी लिए धन की ही रहती है, बस और कमाऊं। और सच्चाई सुनाई जीवन की, का मुझे ज्ञान से भी प्यार है, योग से भी प्यार है, सब कुछ करता हूं, सेवा भी करता हूं, लेकिन अगर सच मेरे से पूछा जाए तो मेरी जो मनोस्थिति है वो धन में ज्यादा जाती है। तो जरूरी नहीं कोई मोह व्यक्ति से ही होता है, कईयों का व्यक्तियों से नहीं अपने से होता है। अब मैं कोई मोह के ऊपर क्लास कराने नहीं बैठी हूं, लेकिन हमको समझ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा महाविकार है जो हमें गुण संपन्न नहीं बनने देता, निर्विकारी नहीं बनने देता। ब्राह्मण पवित्रता की धारणा जल्दी कर लेता है, पहले ही दिन से ही काम विकार का गेट तो बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्रोध भी खत्म होता जाता है, शर्म आता है, कहेंगे ये ज्ञानी योगी है इतना गुस्सा करता है ना, पड़ोसी आके कह जाते हैं, वो पड़ोसियों को खुद ही लेके आता है, आप बाबा के बच्चे बनो। और जब पड़ोसी अकेले में मिलते हैं ना, कहते बहन जी ऐसे तो ये अच्छा है लेकिन गुस्सा बड़ा करता है, फिर शोभा नहीं देता, शर्म आता है, पता तो लग जाता है मेरी बात पहुंच गई है, तो वो भी धीरे धीरे छूट जाता है क्रोध भी, फिर थोड़ा थोड़ा रह जाता है कहीं कहीं। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमको अपने आप को इतना आत्म अभिमानी स्थिति पे लाना होगा कि जो देवताओं का वर्णन होता है, देवताओं के जीवन में निर्विकारी जीवन है, इसीलिए उनका आज यादगार में पूजन होता है और वो हमारी ही निशानी है, तो अवश्य मुझे ऐसा बनना होगा ना। बाबा ने स्वयं को सर्व गुणों से संपन्न कराया। बाबा की बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा हर एक का गुण देखता था और हर एक का गुण वर्णन करता था। हम सब सर्व गुणों से संपन्न बन जाएं, आपने इसके लिए क्या तैयारी की? अब अपने को ये देखो कि क्या सचमुच मेरे अंदर वो देवताओं वाले सारे गुण हैं। अक्सर करके कई अपने एक दो गुण को ही देख के ना खुश होते रहते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं ना, या धारणा की क्लास कराते हैं हाँ, या वर्कशॉप करते हैं, तो कोई कोई कहते हैं बहन जी मेरे अंदर बहुत सहनशीलता है, बात मत पूछो, मैंने जितना सहन किया है कोई कर भी नहीं सकता। ये राइट बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन क्या सचमुच उतनी ही उदारता है बाबा में? तो वो भी थी, देवताओं का गुण है। उतनी ही निरहंकारिता है, या सहन करने के बाद अहंकार भी आ गया, मैं ही तो हूं, चुप रही ना, सहन किया ना, लेकिन उसके साथ वर्णन भी कर दिया। तो हमें अपने आप को चेक करना है। ऐसे ही हवा में खुश नहीं होना। बाबा का तो हमारे साथ बहुत प्यार है ना, हमें शिक्षा भी देता है लेकिन साथ साथ हमें खुश भी करता है, विशेषता भी सुनाता है, इसलिए ताकि हमारा उमंग उत्साह पुरुषार्थ में बना रहे। पर अपनी किसी भी एक विशेषता से, अपने कोई भी एक त्याग से हाँ, या कोई भी अपनी एक सेवा से मुझे थोड़ा सा नशा चढ़ जाए तो वो मेरी कई बातों की कमी बन जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है जिसमें गुण संपन्न बनने के साथ कोई विकार भी ना आए, निर्विकारी भी रहूं। तो उतना मुझे उसके लिए अंदर अंदर देह भान छूट जाए, मैं आत्म अभिमानी बन जाऊं। तो गुणों से संपन्न बनना इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं तो हम सहज शिव बाबा के गुणों को, ईश्वरीय गुणों को जीवन में समा सकते हैं। और जब ईश्वरीय गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं तो देवताई गुण अपने आप झलकते हैं। जैसे देखो, एक ही मिसाल सुनाती हूँ, शिव बाबा शांति का सागर है। बाबा ने हमें कहा, बच्चे सिर्फ एक मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ दिन रात किया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, हर एक को आत्मिक दृष्टि से भी देखा। तो वो शांति का सागर है, मैं भी उसकी रचना शांत स्वरूप हूं, और मैं प्रैक्टिकल मन वचन कर्म से शांत रहने लगी। ये सबसे इजी मुझे, हाँ, मेहनत नहीं लगी, सहज नेचुरल नेचर मेरी बनती जा रही है। तो अगर सच में मैं अंदर से भी शांत हूं मन वचन कर्म सहित, तो मेरे अंदर मधुरता अवश्य होगी, सहज आ जाएगी, धैर्यता भी आ जाएगी। कोई क्रोध करेगा आप शांत रहेंगे, आप में धैर्यता भी दिखाई देगी, नम्रता भी आ जाएगी। और मैं तो समझती हूं क्षमाशीलता भी आ जाएगी कि बेचारे का दोष नहीं है, तो ये भी परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, लेकिन अभी इसको पहचान नहीं है। तो एक शांति के गुण ने, क्योंकि वो ईश्वर का गुण है, वो शांति का सागर है, और आपने अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ जोड़ा है, तो ये लक्षण आपका दिखाई देगा कि देखो कुछ भी हो जाए ये शांत रहते हैं। आज सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसकी ये महिमा हो रही है, क्योंकि आप सब ने अपने जीवन में लाया है। हम सब राजयोगी हैं, राजयोगिनी कहलाते हैं, खुद को हम खुद कहते हैं, भैया हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तुम भी करो। तो देखो कितने गुण सहजता से आपके जीवन में आ गए। अब अपनी लिस्ट निकालना, देवताओं के गुणों की लिस्ट मालूम है ना आप सबको, कई बार क्लास में भी वर्णन होती है, मुरलियों में भी आती है, कई बार तो लिस्ट भी आई है, 56 गुण तो विशेष लिखे हुए आते हैं देवताओं के, देवी गुणों का बुक भी बना हुआ है, उसमें भले 56 नहीं है परंतु कई जगह 56 गुणों का वर्णन है। तो आप टिक मार्क करना कौन सा है कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है मैं तो समझती नहीं वो निशान आएगा, क्योंकि वो भी बहुत नहीं तो थोड़ा होगा। हर एक में कोई गुण 100% तो धीरे धीरे अभी उस तक पहुंचेंगे हम, लेकिन कोई गुण 90% तो कोई गुण 40% है, ऐसे भी होता है। तो मुझे ये ध्यान देना है कि जो मेरे अंदर 40% है उसको अब 90 से 100 तक लाना है। फिर गुण तो आप में है सब में, तो उन धारणाओं को हमें ध्यान पर रखना होगा कि सचमुच वो निशानियां मेरे जीवन में दिखाई देती हैं। जैसे शांति की मैंने सुनाई वो सब में दिखाई देती है, पर ये फर्क होगा किसी में ज्यादा किसी में कम। तो मेरा लक्ष्य देखो कितना ऊंचा है, ब्रह्मा बाबा की ये धारणा थी, बाबा हर एक का, चाहे छोटा से छोटा प्राणी हो, छोटा से छोटा कोई भी हो, यहां तक कि पशु पक्षी भी, बाबा उसका भी गुण देखता था। इसलिए मुरलियों में कई बार बाबा का वर्णन आता ना, कछुए में भी देखो समेटने की शक्ति है ना, सर्प में भी ये है, मोर में भी ये है, गाय में भी ये है। नौकर भी आता था तो बाबा उसकी भी विशेषता देखता था, उसको भी उतनी स्नेह की दृष्टि देता था, उसको भी प्यार से सौगात देता था, उसका भी भला सोचता था। बाबा सफाई वाली भी आती थी, बाबा कहता था ये अगर बाबा के नियमों का पालन करे, बाबा की शिक्षाओं का पालन करे तो ये ब्राह्मणी बन सकती है। इतना बाबा का हर एक का गुण देखने का, तो खुद सर्व गुणों से भरपूर हो गया, सर्वगुण संपन्न बन गया। तो हम सब भी तो वही पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबको तो वही लक्ष्य मिला है, फिर कोई कोई भाई बहन कहते हैं नारायण तो एक ही बनेगा ना, मैं थोड़ा बनूंगा। हाँ आप नहीं बनेंगे। अच्छा आप नारायण जैसे तो बन सकते हो। बोलो हाँ बोलो भाई, है ना नारायण जैसे तो बन सकते हैं ना, हाँ लक्ष्मी जैसे तो बन सकते हैं ना। इस पर भी बाबा ने कहा हुआ है आप बनो, ये काम मेरा है। आठ की माला एक के बजाय दो तीन चार कई मालाएं बन जाएंगी। और आज की तो दुनिया ही ऐसी है, कलयुग की दुनिया में भी क्या करते हैं, एक चीज बनते उस जैसी हजार बना देते हैं, है ना। हाँ तो फिर तो हम उस जैसा तो बन सकते हैं ना, फिर उसके समीप उसके समान के राज्य में तो रहेंगे ना, दूर अलग किसी गांव के अंदर थोड़ा प्रजा बन के रहेंगे। फिर गद्दियां भी कई चलेंगी, ऐसी बात थोड़ा है। तो ये तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। हम सबको सर्वगुण संपन्न बनना है, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, जो विष्णु को अलंकार दिखाए हैं वो आपके ही हैं, वो ब्राह्मण जीवन में ही हैं, सतयुग में तो उनकी जरूरत ही नहीं होगी। सुदर्शन चक्करधारी हम अब भी हैं या सतयुग में होंगे? अब भी है ना, सबको मालूम है ये। तो मैं अभी ही चक्रधारी रहूं ना, वरना मेरा सुदर्शन चक्र चलता रहे चलता रहे। हाँ शंख अभी है या सतयुग में होगा? अभी है। ऐसे गदा भी अभी है। एक बार संदेश आया था बाबा का, बड़ा अच्छा, बहुत साल पहले की बात है ये, क्योंकि दादी गुलजार लाया करते थे संदेश ऐसे, हाँ सबके लिए, ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के हिसाब से। और बाबा की मुरली में भी एक बार आया था, अव्यक्त बाप दादा ने भी वर्णन किया था। तो बाबा ने कहा था कि बाबा कभी कभी बच्चों का चित्र देखता है, अलंकार तो इसी समय ही मैंने बच्चों को दिए, लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों के हाथ में नहीं दिखाए, विष्णु के हाथ में दिखाए हैं। तो वो राज बाबा ने स्पष्ट किया था। बाबा ने कहा कि मैंने देखा ब्राह्मण एक अलंकार उठाते हैं तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा उठाते हैं दो उठाते हैं तो कभी तीसरा गिर जाता है, हाँ चौथा उठाते हैं तो कभी दूसरा गिर जाता है। तो कहा फोटो खींचो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। माना बाबा का भाव था शंख ध्वनि करने लगते हैं तो गदा गिर जाती है, हाँ और अगर गदा उठाते हैं विकारों के ऊपर, हाँ ज्ञान से उसको वार करते हैं तो वो कमल फूल गिर जाता है। तो वो फोटो कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा बोलो। तो इसलिए किसके हाथ में दे दिए? हाँ बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो। जब आपका संपूर्ण स्वरूप होगा देव पद का विष्णु, उसके हाथ में दे दिए, क्योंकि उस समय आप चारों का स्वरूप होंगे, उस समय उसकी पुरुषार्थ की स्थिति नहीं होगी, उस समय आपको धारण करने की जरूरत नहीं होगी, आपका जीवन ही उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी क्योंकि हम पुरुषार्थ ही हैं इसलिए चारों एक साथ पकड़ ही नहीं पाते, कई बार पकड़ने चारों ही हैं, पकड़ने माना धारण चारों ही करने हैं। हाँ सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू किया तो शंख ध्वनि करना मुश्किल लगा। कई बार कई बाबा के बच्चे ऐसे कह भी देते हैं, कहते अंदर तो मैं चिंतन करता रहता हूं, मेरा मुख नहीं खुलता, बहन जी सुनाने वाली बात मुझे मत कहा करो। हाँ कभी कभी बाबा कहता भी है ना, कई बच्चे कहते मेरा मुख नहीं खुलता, मना मैं ज्ञान सुना नहीं सकता। तो बाबा कहते क्यों? आप अपने चित्रों के आगे सामने खड़े हो, बोलना शुरू करो, वही तो औरों को सुनाना है। तो स्वदर्शन चक्र माना ही प्योरिटी ऑफ थॉट्स, और वो हम इस समय ही अपनी धारणा बनाते हैं। लेकिन हमारी ऐसी धारणा होने से ही हम भविष्य विष्णु पद को पाएंगे ना, मीन्स लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। उस समय हमें ये पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी आत्मा अपने ही उस पवित्र स्वरूप में होगी। तो ये चारों धारणाएं ही हमारे निशानी अलंकार बने हैं। तो स्वदर्शन चक्र मीन्स ही प्योरिटी ऑफ थॉट्स, मेरे संकल्पों की पवित्रता कितनी है। और अब तो बाबा कहते हैं व्यर्थ भी ना चले, दूसरे तो क्यों चलेंगे। अब थोड़ा हम सबको दूसरों को कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव थिंकिंग हटा दो, हर एक को समझाते हैं, उससे परेशानियां आती हैं, घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष आता है, वो तो हमको जीवन में रखना ही नहीं है। तो मैं खुद को देख सकती हूं ना कि मेरे संकल्पों में कहीं इस प्रकार की नेगेटिविटी तो नहीं है। तो ये देवता ही लक्षण नहीं है, देवता कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, रीस नहीं करते, बदला लेने की भावना नहीं रखते, ये आसुरी लक्षण है। और इसीलिए इस आसुरी दुनिया में हर मनुष्य दुखी और अशांत है। बाबा ने हमारे संकल्पों की कितनी पवित्रता शुद्धता कर दी कि हमें वो ख्याल ही नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए, आए तो हटा दो, और जब बार बार हटा देंगे तो फिर नहीं आएगा। किसी चीज को आप बार बार हटाओ, हाँ डॉग भी घर में आता हो, आज आपने हटाया, आपने अटेंशन रखा, अगर कल भी आएगा मुझे इसको हटाना है, फिर ऐसे नहीं अलबेले हो गए तो कल फिर घुस आया वो अंदर, तो फिर उसको लगेगा यहां चांस मिल सकता है, होता है ना ऐसे, या बिल्ली आई या जो भी आया। हमारे पांडन में एक डॉग आता था ऐसे मेन गेट से ना, तो मैंने किसी की ड्यूटी लगा दी, मैंने कहा मैं तो यहां सारा समय खड़ी नहीं रहती, पहरे वाले कोई का, इसको किसी भी दिन नहीं आने देना, अगर आपने एक दिन मना किया एक दिन आ गया तो इसकी आदत बनी रहेगी, और सचमुच फिर 8-10 दिन बाद उसका आना बंद हो गया। तो ऐसे ये थॉट्स हैं, उसको एंट्री नहीं दो, इतना अटेंशन रखो, फिर आप में आना बंद हो जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैं इतनी बाबा की अच्छी बच्ची नफरत कर रही हूं, बदले की भावना रख रहा हूं, अरे क्या लेना मेरे को इस दुनिया से, ये तो दुनिया वैसे राख की ढेरी होने वाली है, और मेरा और इसका क्या तुलना है, मैं कौन, मैं क्या, हाँ मेरा इतना भविष्य ऊंचा, मैं तो सोने के महल में हाँ जाने वाली आत्मा ऐसी सुख की दुनिया में जा रही हूं, ये क्या है क्षणभंगुर की बातें, मैं इसके पीछे भागूं, क्यों भागूं। बाबा ने देखो जब अपना फैसला किया तो उसको क्या कहा पार्टनर को, जो बाबा ने पहले ही लिख दिया पार्टनर से बात करने से पहले ही, बे को मिली बादशाही, माना उसको जो बे माना दूसरा। तो बाबा ने अपने पार्टनर को कह दिया भैया आपको जो चाहिए ले लो, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि बाबा को वो सेवा में समर्पित करना था। उसने उसमें भी होशियारी की, पता है अपने हिसाब से, लेकिन वो होशियारी भी पलट गई, बाबा तो भगवान को दे रहा था ना। हाँ शायद आपने ना सुनी हो ये बात, पार्टनर ने क्या किया, सोचा पैसा मैं रख लेता हूं, गोल्ड बाबा को दे देता हूं। तो बाबा कुछ नहीं बोले, चुप रहे, जबकि उस समय बाबा को पैसे की बड़ी जरूरत थी। बाबा ने पार्टनर से झगड़ा नहीं किया, कुछ उलहना ताना नहीं मारा, कहा अच्छा जिसमें तुम खुश रहो, पैसा रख लिया, बांटा, उसका हिस्सा बाबा का हिस्सा बाबा को दिया, लेकिन गोल्ड में दे दिया, फिर बाबा ने क्या किया, धीरे धीरे गोल्ड बेचता गया, जो यज्ञ में बच्चे आए 350 उनकी पालना करता गया, उनके लिए भवन भी खरीदता गया और गोल्ड महंगा होता गया। तो क्या हुआ, बाबा को भी पैसा वैसे ही मिलता गया, तो बाबा का तो फायदा हो गया ना, घाटा थोड़ा पड़ा, क्योंकि वो तो ईश्वर के काम में लगा रहा था, अपने लिए तो कहा नहीं था उसने, और उस बेचारे का तो पैसा कोई इतना बढ़ा नहीं। तो देखो है ना ये कमाल की बात, आवश्यक यही है कि हम अपने संकल्पों को, बीज को ठीक रखें। बीज है संकल्प, बीज शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, तो फल भी वैसा आएगा। तो स्वदर्शन चक्र मींस हमेशा शुद्ध विचार चलाओ, सेल्फ रियलाइजेशन करो, ये चेक करो मेरे दूसरे थॉट्स ना आए, ये निशानी है। जितना जितना हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, हमारे विचारों की पवित्रता वैसी ही होगी, क्वालिटी हमारे थॉट्स की वैसी ही होगी। और दूसरा है शंख, मींस प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, हमारे शब्दों की क्वालिटी भी वैसी होगी, ये पक्की बात है। हमारा बोल बहुत स्वमान वाला, मीठा, सुखदाई होगा। हमारा तो स्लोगन ही है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, स्वमान में बोलो। ऐसे नहीं जो मुख में आया कह दिया, या जो दूसरा कह रहा है मेरे को लौट के वैसा ही कहना है। हाँ, जैसे दुनिया में कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं, हमारे बोल बहुत ऊंचे होंगे, साधारण नहीं होंगे। ये देवताओं की निशानी है, उनका मुख सदा मुस्कुराता हुआ, होठ मुस्कुराते हुए होते हैं, हंसते हुए नहीं, हा हा नहीं, मुस्कुराते हुए। तो उन मुस्कुराते हुए होठों से बोल कैसे निकलेंगे, सुखदाई। एक बार एक नौकर फैमिली के बच्चे को बाहर थोड़ा सैर कराने ले गया, बच्चा छोटा था, ट्रॉली में डाल के ले गया पार्क में। तो वो बच्चा रोता जाए, अब नौकर बेचारा क्या करे, उसको चुप कराता रहा, लेकिन वो और चीखे मार के रोए। तो नौकर कह रहा है, रामलाल चुप हो जा। तो आसपास और भी कई लोग सैर कर रहे थे, तो एक माता को बड़ा ख्याल चला, वो साथ साथ ही चल रही थी, कि छोटा सा बेबी ये इसको रामलाल कह रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। वो माता ने पूछ ही लिया, भैया इस बेबी का नाम रामलाल है क्या? तो भाई नौकर बोला, बहन जी इसका नहीं, मेरा नाम रामलाल है, मैं अपने को कह रहा हूं चुप हो जा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत रो रहा है बच्चा, चुप ही नहीं हो रहा, समझा? अब हम सब देवता बनने वाले, सोचो हमारे बोल नियंत्रित होने चाहिए ना। वो एक अज्ञानी मनुष्य भी कितनी टैक्ट से अपने को कंट्रोल कर रहा है कि मेरे से ऐसा कुछ ना हो जाए। और आप बच्चों को थप्पड़ मार दो माताएं, और कोई आपका फोटो खींच ले कि ये तो देवता बनने की पढ़ाई करती है, सत्युग में मारेंगे थप्पड़, बच्चे ही अच्छे होंगे इसलिए मारेंगे ही नहीं, लेकिन अच्छे इसीलिए मिलेंगे ना, क्योंकि आप ही तो होंगे, वो जन्म लेने वाले भी तो कौन होंगे, आप ही तो सब होंगे। तो वो संस्कार हम कब बना रहे हैं, अभी हमारे इस समय की पवित्रता से ही बन रहे हैं। जो मन की भी पवित्रता है, वाणी की भी पवित्रता है, मींस परफेक्शन है। तो मैं तो कहूंगी परफेक्शन ऑफ थॉट्स, नॉट ओनली प्योरिटी ऑफ थॉट्स। प्योरिटी भी हमारी परफेक्शन 100%, मन की भी, वचन की भी, कर्म की। परफेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि हमारे शब्दों में कहीं ईर्ष्या की स्मेल नहीं आनी चाहिए। समझ गए ना इस बात को? बात करते करते ही समझ में आ जाता है इसके दिल में कितनी दूसरे के लिए नफरत है। और मम्मा बाबा, हमारी दादियां बोलती थी तो फूल झड़ते थे, सुख मिलता था सबको, सुकून मिलता था, अंतरात्मा खुश हो जाती थी, संतुष्ट हो जाती थी उनके एक शब्द से, एक दृष्टि मात्र से। है ना ऐसा? हर एक को अनुभव है ना, भले बाबा मम्मा को ना भी देखा हो, दादियों की पालना तो मिली है ना। दादियां आगे से क्रॉस कर जाती, ऐसे घूम के देख लेती, खुश हो जाते हैं। है ना अनुभव सबको? हमारे सुरेंद्र भाई बैठे हैं, कितनी अनुभवी आत्मा है, कितनी पालना मिली भी हुई है, सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसा बाबा ने हमें ऊंचा लक्ष्य देकर वैसी जीवन की धारणाएं बना रहा है। आप सबकी बनती जा रही हैं, बस उसमें परफेक्शन लाते जाओ। हाँ, बाबा कई बार कहता है ना, मूर्ति तैयार है लेकिन थोड़ा पॉलिश करके उसके नए नक्श अच्छे निकाल लो। हाँ, मूर्ति बढ़िया बनी हो, हाथ भी बढ़िया है, नैन थोड़े से भी जरा ऊपर नीचे, कहते नहीं नैन ठीक करो इसके। मुख थोड़ा सा भी ठीक ना हो तो कहते इसका थोड़ा ठीक कर दो। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारा देखना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा चलना फिरना कैसा है, खाना पीना कैसा है, उठना बैठना कैसा है, व्यवहार में आना कैसा है, इवन सोना कैसा है, अमृत वेला उठना कैसा है। मैं खुशी खुशी उठती हूं, मजबूरी से उठती हूं। प्यार से मुरली सुनती हूं या बहनों के बार बार कहने से या बाबा के डर से सुनती हूं? ऐसी परफेक्शन, ये निशानियां हैं, आप अपने देव पद की ओर पहुंचते जा रहे हैं। और बाबा का ऐसा होता गया, बाबा कर्मातीत बनता गया, कर्म का प्रभाव बाबा के ऊपर असर नहीं करता था। ये नहीं बहुत अच्छा निकला फल तो बाबा का, मैंने ही तो किया ना, देखो मेरे कहने से ही हुआ ना, मेरे कारण हुआ ना, कभी बाबा को ये भान नहीं आता था। ये औरों को अनुभव होता था कि बाबा कितना डिटैच है, न्यारा है। हम तो छोटे थे उस समय, इतनी गहराई मालूम नहीं थी, बस बाबा ने प्यार किया, सौगात दी, चाय पिलाई, हमें वही बातें याद है। छोटेपन में तो यही होता है ना, ज्ञान की गहराई तो हमको भी बाद में धीरे धीरे समझ में आती गई ना, 10 वर्ष की आयु के बाद, उसमें भी 15 के बाद, 20 के बाद, जब लौकिक पढ़ाई पूरी करते गए। योग अच्छा लगता था बचपन से, ये सब था। तो बाबा के हर कर्म से, चल भी रहे बाबा तो सबको आभास होता था ये कोई मानव नहीं चल रहा, ये कोई फरिश्ता चल रहा है। और फरिश्ते का साक्षात्कार भी बहुतों को होता था, क्योंकि बाबा ने स्वयं को ही देह भान से डिटैच कर दिया। इतना बाबा का डीप पुरुषार्थ रहा कि बाबा मैं देह हूं, बाबा का ये ख्याल मिट गया जैसे। देह एक मात्र माध्यम है और वो भी प्रकाश स्वरूप है। जैसे तो फरिश्ता बाबा जैसे धरती पे पांव नहीं है, ऐसे कितने सब अनुभव सुनाते थे। तो मुझ आत्मा को भी अपनी ऐसी ही आत्म अभिमानी स्थिति से मेरे कर्मों में परफेक्शन दिखाई देगी। और ऐसे ही गदा भी इस बात की निशानी है, वो अलंकार भी इसी बात का ही प्रतीक है, प्योरिटी ऑफ एक्शंस, कि हर कर्म मेरा बड़ा परफेक्ट, उसमें किसी विकार की झलक ना आए। ये देखा इसमें भी कितना लोभ है, ये ना कोई भी विकार, कोई भी किसी भी एक्शन से, ये नहीं जिस समय कुछ मिल रहा है सिर्फ उसी समय ही, हाँ उस समय तो तुरंत पता चल जाता है, मेरे को नहीं मिला तो मूड खराब हो गया, भले लोभ विकार नहीं है लेकिन ये परफेक्शन भी तो ना हुई ना। और पहुंचना तो आपको उस मंजिल तक है ना, आधी परफेक्शन तक तो नहीं रहना ना, रहना है? नहीं। आप तैयार हो जाओ, हाँ एक कॉमन रीति से भी देखो, और कोई चीज आपकी ठीक ना हो तो भी सब टोक देते हैं, अरे भाई ये ठीक कर लो, आपकी ये पल्लू ठीक नहीं जा रहा, या भाई साहब आपकी ये पॉकेट ठीक नहीं है, या आपकी कॉम्ब ठीक नहीं है, तो वो तो स्थूल बातें होती हैं, उसमें भी देखो हम ध्यान रखते हैं। तो हमारी तो बहुत आत्मा की परफेक्शन है जो हमारे कर्मों से झलकती है, कर तो आत्मा ही रही है ना सब कुछ। तो हमारा हर कर्म ऐसे दिखाई दे उसमें किसी भी विकार की जरा भी झलक ना आए। ऐसे ही चौथा है कमल फूल, देवताओं का आसनी कमल फूल दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। तो आप सब भी तो कमल फूल पर ही बैठे हो, आपकी पूजा भी जब करते हैं ना तो कमल फूल ले जाके पैरों में रखते हैं, होती है ना आपकी पूजा, ये नहीं होती? हाँ होती है ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा किसकी पूजा है? फिर मंदिरों में आप 63 जन्म अपनी तो पूजा करते हैं, बाबा ने कहा ना आप ही पूजे आप ही पुजारी, और अब कौन सा रोल है आपका, हाँ पुजारी वाला पूज्य वाला, पुजारी थोड़ा रहे हो अभी आप, अब तो आप खुद वो बन रहे हो। तो आपको देख के नाच तो आता है ना, खुशी तो होती है ना, अगर देखते हो कहीं लक्ष्मी नारायण का चित्र तो आप नतमस्तक होते हो या बड़े नशे से देखते हो, मैं ही तो ये हूं, और उन्हीं के आगे कमल फूल आगे रखा जाता है, क्योंकि आपका जीवन इस समय कमल के समान बन रहा है। और कमल की यही विशेषता आप सब जानते हो कि वो कीचड़ से ऊपर होता है, न्यारा और प्यारा, मीन्स प्योरिटी ऑफ लाइफ, पूरा जीवन ही हमारा इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, इतना शक्तिशाली है, इतना परफेक्ट है कि कीचड़ मीन्स कोई भी किसी भी प्रकार की इस मायावी दुनिया की बात हमें छू न सके किसी भी रूप से। इसीलिए मेरी ये महिमा है मीन सतयुगी देव पद के पाने की, अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो मर्यादा भी हमारी थोड़ी भी ऊपर नीचे ना हो, कितनी ऊंची महिमा ये। ब्राह्मण कुल की अपनी मर्यादाएं हैं जो हमें देवता जीवन की ओर ले जाती हैं, हमें परफेक्ट बनाती हैं। हमारी दिनचर्या हमारी मर्यादा है, हम अमृत वेले मान लिया जब मिस कर लिया तो एक मर्यादा टूटी ना, रात को गुड नाइट करके सोना मर्यादा है, भोजन करते हैं पहले बाबा को याद करना ये मर्यादा है, ऐसे व्यवहार में आने की भी मर्यादाएं हैं, सेवा करने की भी मर्यादाएं हैं, हर बात की। अहिंसा परमो धर्म, संकल्प भी ना आए किसके प्रति उल्टा। बाबा कहते हैं ना, ना दुख दो ना दुख लो। तो मैं अहिंसा परमो धर्म हूं। मैं अंदर ही अंदर दुखी होती हूं, किसी भी बात से परेशान होती हूं, तो अहिंसा कहां हुई? मैं अपने आप को ही दुख दे रही हूं, या मेरे से अनजाने वश भी कोई ऐसा बात होती, दूसरा दुखी होता रहता है बेचारा, तो मुझे अपने ऊपर कितना ध्यान देना पड़ेगा? सोचो, मैंने एक शब्द ऐसे लापरवाही से बोल दिया, अगले की नींद ही चली गई। सोचो, तो अहिंसा हुई, भले मैंने स्थूल हिंसा नहीं की। तो बाबा कहते ना, इसलिए दुख लो भी नहीं, ना दुखी हो, ये भी समझ चाहिए। दुनिया में किसी को ये बात मालूम नहीं है, ये तो कहते दुख नहीं दो, और मुझे भी दुखी नहीं होना, और ये जोर जोर से बताते हैं, मैं फलाने के कारण बड़ा दुख हुआ हमें, और बाबा कहते आपको भी दुखी नहीं होना। तो कहीं जरा सा भी मोह होगा तो दुखी होंगी ना। तो अहिंसा परमो धर्म, तो ये सारी बातें मेरी इसी समय की हैं, इसी जन्म की हैं, इसी समय ही मेरे अंदर ये सारी धारणा मुझे उस देव पद पे ले जा रही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे ब्राह्मण तो बन गए, देवता बन रहे हो, तो अभी उस बीच के पीरियड में देखो, मैं बाबा समान कर्मातीत हूं, उसके नजदीक पहुंच रही हूं कि कर्म का प्रभाव मेरे को ना आए। वैसे भी बीज बोया जाता है, अच्छा बीज होता है, अच्छा फल निकलता है, फल का सुख सब लेते हैं, सिर्फ बोने वाला ही नहीं लेता। तो मेरे कर्म का बीज ऐसा हो इस समय कि सब सुखी हो मेरे द्वारा, मैं भी सुखी, दूसरे भी सुखी। ठीक है, तो आप सबको देख के तो बहुत नाज आता है, आपको देख करके आपके लौकिक वाले चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके अंदर से ये निकले हैं तो ये देव पुरुष, भले मुख से वो देह अभिमान वश कहते नहीं है, लेकिन आज दुनिया समझ रही है इस बात को। तो आपको भी अपने ऊपर इतना नशा, इतना नाज, अपने भविष्य की इतनी खुशी सदा बनी रहे। तो वैसे ही जीवन में उतना ही उमंग, उत्साह और वो सारी धारणाएं, जो आप सबने कही, सर्वगुण संपन्न की, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, 16 कला संपूर्ण आती जाएंगी। 16 कला संपूर्ण माना ही 100% परफेक्शन। ओम शांति।